नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति प्रताप सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि आतंकवाद पर दोहरा मापदंड अस्वीकार्य है। श्री मोदी ने चीन के तियानजिन में एससीओ शिखर सम्मेलन में एक वक्तव्य में आतंकवाद को मानवता के लिए एक बड़ी चुनौती बताया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा की जानी चाहिए।
भारत पिछले 4 दशकों से निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा है। कितनी ही माताओं ने अपने बच्चे खोए और कितने बच्चे अनाथ हुए। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि एससीओ के लिए भारत का दृष्टिकोण और 3 नीति महत्वपूर्ण स्तंभों सुरक्षा, संपर्क और अवसर पर आधारित हैं।
एससीओ समय के अनुरूप इवॉल्व हो रहा है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ड्रग ट्रैफिकिंग और साइबर सिक्योरिटी जैसे समकालीन चुनौतियों से निपटने के लिए 4 नए केंद्र बनाए जा रहे हैं। वैश्विक संस्थानों रिफॉर्म के लिए एससीओ सदस्य आपसी सहयोग बढ़ा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र की 80वीं वर्षगांठ के अवसर हम एकमत होकर यूएन रिफॉर्म का आह्वान कर सकते हैं।
श्री मोदी ने एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ विचारों का आदान प्रदान भी किया। सम्मेलन के बाद जारी तियानजिन घोषणा पत्र में आतंकवाद के खिलाफ स्पष्ट और एकजुट संदेश दिया गया। तियानजिन संयुक्त घोषणा पत्र के माध्यम से सदस्य देशों ने एक सशक्त और एकजुट संदेश देते हुए 22 अप्रैल 2025 को पहलगांव में हुए आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने पीड़ितों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और इस जघन्य कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और प्रायोजकों को न्याय के कटघरे में लाने की आवश्यकता पर जोर दिया। शिखर सम्मेलन के बाद प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच तियानजिन में आज द्विपक्षीय वार्ता हुई। श्री मोदी ने कहा कि भारत और रूस कठिन से कठिन समय में हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन अपनी द्विपक्षीय बैठक स्थल पर एक साथ गए। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन के साथ बातचीत हमेशा सार्थक होती है। अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में कल जलालाबाद शहर के पास आए 6 तीव्रता के भूकंप में 800 से ज्यादा लोग मारे गए और 2,500 से अन्य घायल हो गए। काबुल में स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि बचाव दल दूरदराज के इलाकों में पहुंचने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूकंप में मरने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि जैव प्रौद्योगिकी देश के हर क्षेत्र में पहुंच गई है, जो भारत की वैश्विक जैव प्रौद्योगिकी महाशक्ति बनने की क्षमता को दर्शाता है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश में जैव अर्थव्यवस्था वर्ष 2014 के केवल 10 अरब डॉलर से बढ़कर 2024 में 165 अरब डॉलर से अधिक हो गई है। श्री सिंह ने बताया कि सरकार 2030 तक 300 अरब डॉलर की जैव अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा प्रणाली में डिजिटलीकरण और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एकीकरण की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक समारोह में श्री प्रधान ने पीएम ई विद्या मोबाइल एप्लीकेशन दीक्षा 2.0 सहित अन्य पहलुओं की शुरुआत की। इस पहल का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता और पाठ्यक्रम विकास को बढ़ावा देना है। श्री प्रधान ने भारत के शिक्षा क्षेत्र की प्रगति में एनसीईआरटी की भूमिका की भी सराहना की। गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। गृह मंत्री जिले के सबसे प्रभावित गांव मूंगचक भी गए। श्री शाह बाढ़ की स्थिति और राहत कार्यों का आकलन करने के लिए रविवार रात जम्मू पहुंचे थे। 14 अगस्त से किश्तवाड़, कठुआ, रियासी और रामबान जिलों में बादल फटने, भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ में 130 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और 33 लोग लापता हैं। जम्मू कश्मीर में त्रिकुटा पहाड़ियों में खराब मौसम को देखते हुए एहतियातन तौर पर श्री माता वैष्णो देवी यात्रा आज 7वें दिन भी स्थगित कर दी गई। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की चेतावनी दी है। दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पंजाब में भी दिन भर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।